पृष्ठ संख्या 38, तृतीय अध्याय, ग्रीक दर्शन एरिस्टॉटल। एरिस्टॉटल या अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। एरिस्टॉटल का जन्म थ्रेस के स्टेगिरा नामक नगर में हुआ था। उनके पिता मेसिडोन नरेश के राज वैद्य थे। 17 वर्ष की आयु में एरिस्टॉटल विद्या अध्ययन के लिए एथेंस स्थित प्लेटो की एकेडमी में भर्ती हुए और 20 वर्ष तक, प्लेटो का देहांत होने तक, वे अपने गुरु प्लेटो के साक्षात संपर्क में रहे। बाद में उन्होंने एकेडमी छोड़ दी और अपने स्वतंत्र विचारों के विकास में लग गए। एसोस नगर में जाकर वे हर्मियस के संपर्क में आए और उनकी भतीजी पाइथियस से विवाह कर लिया। मेसिडोन नरेश फिलिप के राजकुमार अलेक्जेंडर या सिकंदर, जो बाद में महान कहलाए, वे 3 वर्ष तक अध्यापक रहे। एथेंस लौटकर उन्होंने अपनी लाइसियम नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उन पर अधार्मिकता का अभियोग लगाया गया और वे एथेंस छोड़कर चालसिस चले गए, क्योंकि वे एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा पाप करने का अवसर देना नहीं चाहते थे। एथेंस वासियों का दर्शन के विरुद्ध पहला पाप सुकरात को मृत्युदंड देना था। वहीं 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया। जनश्रुति के अनुसार एरिस्टॉटल का सिर गंजा, पैर पतले और आंखें छोटी थीं, और वे हकलाते थे। उनको ग्रीक होने का अभिमान था और वे अन्य लोगों को बर्बर या जंगली समझते थे। साधारण ग्रीक लोगों को भी वे तुच्छ समझते थे। वे बुद्धि और इंद्रिय अनुभव दोनों का सामंजस्य करके मध्यम मार्ग के समर्थक थे। प्लेटो के बाद दार्शनिक महत्ता में एरिस्टॉटल का ही नाम आता है। उन्होंने दर्शन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आचार शास्त्र, राजनीति और साहित्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। पाश्चात्य निगमन तर्क के तो वे जनक ही हैं, और उसको उन्होंने जो रूप दिया वह शताब्दियों तक मान्य रहा और आज भी उसका महत्व है। मध्ययुग के दार्शनिकों का मुख्य कार्य ईसाई धर्म के सिद्धांतों का एरिस्टॉटल के विचारों के साथ समन्वय करना था। उनके मुख्य ग्रंथ हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स, आचार शास्त्र या इथिक्स और तर्कशास्त्र, ऑर्गेनॉन। पृष्ठ संख्या 39। एरिस्टॉटल के अनुसार ज्ञान के 3 स्तर हैं। प्रथम है इंद्रिय अनुभव, जिसके द्वारा हमें केवल विशेषों का पृथक पृथक ज्ञान होता है। द्वितीय है पदार्थ विज्ञान, जिसके द्वारा हम विशेषों में सामान्य को खोजते हैं, उनके कार्य कारण भाव संबंध को जानते हैं और उस ज्ञान को जीवन के उपयोग में लाते हैं। तृतीय ज्ञान है तत्व विज्ञान या दर्शन। यह सर्वोत्तम है, यह परम तत्व या परम सामान्य का, शुद्ध सत्ता का, सत का ज्ञान है। यह परमार्थ तत्व के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, यह तत्व का दर्शन है। एरिस्टॉटल अपने दर्शन को पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों का पूर्ण समन्वय मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक पूर्ववर्ती दार्शनिक तुतलाता हुआ एरिस्टॉटल या लिस्पिंग एरिस्टॉटल है। दर्शन का लक्ष्य पूर्ण सत्ता का ज्ञान है। अन्य ज्ञान इस सत्ता के आंशिक रूपों को अपना क्षेत्र बनाकर विचार करते हैं। पूर्ववर्ती दार्शनिक भी इस सत्य के आंशिक रूपों की ही कल्पना कर पाए। इसकी पूर्णता एरिस्टॉटल के अनुसार उनके ही दर्शन में हुई है। दर्शन का यह सत्य क्या है? एरिस्टॉटल का उत्तर है कि यह परम तत्व या परम द्रव्य सब्सटेंस है। यह नित्य और कुटस्थ है। स्वयं अपरिणामी होते हुए भी यह समस्त परिणाम या परिवर्तन का कारण है। संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक तो द्रव्य और दूसरे उनके परिणाम या पर्याय। परम द्रव्य सब द्रव्यों का द्रव्य है और सारे परिणामों का कारण है। दर्शन का मुख्य लक्ष्य इस परम द्रव्य का ज्ञान है, जो सब द्रव्यों और उनके पर्यायों में अंतर्निहित है, जो सबके पार सबसे ऊपर है और जिसको प्राप्त करने के लिए समस्त जगत निरंतर प्रयत्नशील है। एरिस्टॉटल के अनुसार प्लेटो का सबसे बड़ा दार्शनिक अपराध उनका परमार्थ और व्यवहार का द्वैतवाद है। परमार्थ और व्यवहार की कल्पना तो अपराध नहीं है, यह तो किसी न किसी रूप में स्वयं एरिस्टॉटल को भी मान्य नहीं है, किंतु अपराध है परमार्थ और व्यवहार का आत्यंतिक भेद। एरिस्टॉटल के अनुसार प्लेटो ने परमार्थ को व्यवहार से बिल्कुल अलग ऊपर उठाकर रख दिया है। प्लेटो का परमार्थ है विज्ञान या आइडिया और व्यवहार है इंद्रिय अनुभव या सेंस। प्लेटो ने विज्ञान जगत को इंद्रिय अनुभव के वस्तु जगत से नितांत भिन्न और असंबद्ध मान लिया है। फलतः विज्ञान जगत ही एकमात्र सत और वस्तु जगत सर्वथा असत बन गया है। एरिस्टॉटल भी विज्ञान का महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं। शुद्ध सत ही शुद्ध चित्त है, किंतु वे विज्ञान जगत को वस्तु जगत से भिन्न न मानकर उसी में अनुस्थित मानते हैं। पृष्ठ संख्या 40। परमार्थ व्यवहार में अंतर्निहित है, व्यवहार के पार उससे अत्यंत भिन्न नहीं है। अतः एरिस्टॉटल के अनुसार विज्ञान का प्राधान्य होते हुए भी वस्तु जगत की सत्ता अक्षुण है। एरिस्टॉटल ने प्लेटो के विज्ञानवाद या थ्योरी ऑफ आइडियाज के खंडन में अपनी सारी शक्ति लगाई है, अतः उस खंडन को भली भांत समझ लेना आवश्यक है। एरिस्टोटल ने प्लेटो के विज्ञानवाद में ये दोष दिखाए हैं। पहला है, प्लेटो के अनुसार विज्ञान या आइडियाज ऑफ फॉर्म्स सामान्य या यूनिवर्सल्स है। सामान्य को उन्होंने केवल हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं माना है, वे सामान्यों को वास्तविक पदार्थ मानते हैं। यह तो ठीक है, किंतु उनके अनुसार सामान्यों का एक अलग ही संसार है। वस्तु जगत के पदार्थ अनित्य और असत हैं, किंतु ये सामान्य नित्य और सत है। ऐसा मानना प्लेटो की भूल है। सामान्य सत्य और नित्य वस्तु होते हुए भी जगत के पदार्थों से अलग नहीं रहते, वे विशेष व्यक्तियों या पदार्थों में ही अनुगत रहते हैं। दूसरा, यदि सामान्यों को विशेष द्रव्यों में अनुगत न मानकर उनसे सर्वथा पृथक माना जाए, तो फिर उन वस्तुओं के भी जिनको हम द्रव्य नहीं कहते सामान्य मानने पड़ेंगे। फिर तो अभाव और संबंधों के भी सामान्य मानने पड़ेंगे, जो असंगत है। तीसरा, प्लेटो का विज्ञान जगत वस्तु जगत की निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है। सामान्यों की स्थापना प्लेटो ने वस्तुओं की सत्ता और उनके स्वरूप की संगत बताने के लिए की थी। संसार के विभिन्न पदार्थ अपने अपने सामान्य कारण सत प्रतीत होते हैं। विविध मनुष्यों में मानवता का सामान्य अनुचित है और विविध अश्वों में अश्वत्व इत्यादि, किंतु प्लेटो इसे भूल गए और उन्होंने सामान्यों के संसार को इस संसार से सर्वथा पृथक कर दिया। ऐसी दशा में सामान्यों या विज्ञानों का जगत हमारे वस्तु जगत की पुनरावृत्ति बन गया। हमारे जगत में जितने पदार्थ हैं उन सबके सामान्य विज्ञान जगत में हैं। वस्तु जगत में विविध मानव अश्व मेज कुर्सी आदि है, जो अनित्य है, और इन्हीं वस्तुओं के नित्य मौलिक रूप सामान्य मानव सामान्य अश्व सामान्य मेज आदि दिव्य विज्ञान जगत में हैं। इस निरर्थक पुनरावृत्ति से क्या लाभ? पृष्ठ संख्या 41। चौथा है, यदि इन सामान्यों की कल्पना इसलिए की जाती है कि इनके द्वारा हम विविध वस्तुओं को जान सकते हैं, तो यह व्यर्थ है, क्योंकि ये सामान्य तो अपने दिव्य विज्ञान जगत में रहते हैं, इस जगत की वस्तुओं में नहीं। जिस कारण इनके द्वारा वस्तुओं का ज्ञान हो सके। पांचवा, ये सामान्य नित्य अपरिणामी और गति शून्य हैं, किंतु इस जगत की वस्तुओं में परिवर्तन और गति है। यदि सामान्यों के कारण ही सांसारिक वस्तुओं की सत्ता और उनका ज्ञान संभव हो, तो परिवर्तन और गति असंभव हो जाएगी। सामान्य इस जगत में परिवर्तन और गति का कोई उचित समाधान नहीं कर सकते। छठवां, ये सामान्य वस्तुतः सांसारिक पदार्थों के काल्पनिक नित्य रूपों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सामान्य मेज बिल्कुल सांसारिक मेज की तरह ही है। अंतर इतना है कि मेज नामक सत्य वस्तु अनित्य है और इस काल्पनिक मेज को नित्य मान लिया गया है। सातवां, सामान्यों को व्यक्तियों का प्राण जीवन आत्मा स्वरूप और तत्व माना गया है। यदि ऐसा है तो फिर ये सामान्य व्यक्तियों से पृथक दूसरे ही लोक में कैसे रह सकते हैं? तब यह कहना कि व्यक्ति इन सामान्यों के प्रति रूप प्रतिकृति प्रतिबिंब प्रतिलिपि आदि है या इनमें भाग लेते हैं काव्य कल्पना मात्र है। आठवां, ये तथाकथित सामान्य वस्तुतः सामान्य न होकर विज्ञान लोक के व्यक्ति हैं। हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, ये काल्पनिक दिव्य व्यक्ति है। वस्तु जगत के एक मनुष्य नामक व्यक्ति को उदाहरणार्थ साकेटीज को ले लीजिए। साकेटीज इस लोक का व्यक्ति है। उसका मौलिक रूप विज्ञान लोक में सामान्य मानव नामक एक दिव्य व्यक्ति है। इसका साकेटीज से कोई संबंध नहीं, किंतु है दोनों मनुष्य, एक लौकिक है दूसरा दिव्य है। अतः इन दोनों मनुष्यों में अनुगत और इन दोनों को मनुष्यत्व का धर्म देने वाले एक तृतीय मनुष्य की कल्पना करनी पड़ेगी, जो वस्तुतः इन दोनों का सामान्य हो। किंतु प्लेटो के अनुसार यह सामान्य भी एक व्यक्ति विशेष हो जाएगा और फिर इसके लिए एक और सामान्य खोजना पड़ेगा। इस प्रकार अनावस्था दोष या इनफाइनाइट रिग्रेस आएगा। प्लेटो ने अपने सामान्यों को व्यक्तियों से पृथक करके उनको सामान्य पद से गिरा दिया है। वे भी व्यक्ति विशेष बन गए हैं। इस प्रकार प्लेटो ने व्यक्ति और सामान्य का भेद ही नष्ट कर दिया है और इसलिए उनके सिद्धांत में अनावस्था दोष का आना अनिवार्य हो गया है। पृष्ठ संख्या 42। नवा, प्लेटो अपने सामान्यों की संख्या या नंबर भी कहने लगे थे, किंतु यदि ये संख्या है तो गणित का विषय है, दर्शन का नहीं। यदि इनको दर्शन में भी घुसा दिया जाए तो भी ये सांसारिक वस्तुओं के कारण तो कदापि नहीं बन सकते। यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि एरिस्टोटल ने अपने इस खंडन में प्लेटो के साथ न्याय नहीं किया है। यह कथन तो उचित नहीं है कि एरिस्टोटल प्लेटो के विज्ञानवाद को समझ नहीं सके थे, किंतु यह अवश्य सत्य है कि एरिस्टोटल ने केवल खंडन के लिए प्लेटो के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा कर दी है और कुछ का अतिरंजन किया है। अपनी प्रारंभिक कृतियों में प्लेटो ने साकेटीज का अनुकरण करके यह लिखा है कि सांसारिक पदार्थ इन सामान्यों में भाग लेते हैं या उनके प्रतिबिंब हैं, किंतु बाद में प्लेटो ने स्वयं अपनी पार्मेनाइडीज नामक कृति में इसका संशोधन करके जगत के पदार्थों को विज्ञानों की अभिव्यक्ति माना है, जिस पर एरिस्टोटल ने कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तुतः एरिस्टोटल के प्रायः सभी आक्षेपों को प्लेटो ने स्वयं उपस्थित करके उनका उत्तर दे दिया है। प्लेटो के सामान्य या विज्ञान वस्तु जगत के पार केवल इसी अर्थ में है कि वे वस्तु जगत पर निर्भर नहीं हैं। पार या ऊपर का अर्थ उनकी स्वतंत्र सत्ता है, न कि भौतिक दृष्टि से ऊपर या दूसरे लोक में रहना। वस्तुतः विज्ञानों को प्लेटो ने दिक्कालातीत माना है, अतः उनके ऊपर या नीचे, बाहर और भीतर का प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर प्लेटो ने स्वयं ही विज्ञानों को वस्तुओं में अनुगत, अनुसित या अंतर्यामी भी माना है। विज्ञान लोक वस्तु लोक से पृथक और सर्वथा भिन्न है। वस्तु जगत में गति और परिवर्तन का कारण प्लेटो ने ईश्वर या डेमिअर्ग को माना है। एरिस्टोटल ने प्लेटो के ईश्वर को अपने इस खंडन में नाम भी नहीं लिया है। प्लेटो ने इन विज्ञानों का भी एक परम विज्ञान माना है, जिसे वे शिव तत्व विज्ञान या आइडिया ऑफ द गुड कहते हैं। यह परम विज्ञान ही वस्तुतः शिव स्वरूप अद्वैत तत्व है, जो सब विज्ञानों का सूत्र आत्मा है और सब में अंतर्यामी है। इस परम विज्ञान की ज्योति विज्ञानों में आती है और उनके द्वारा सांसारिक पदार्थों में प्लेटो ने संसार को कभी नितांत असत नहीं कहा और न वस्तु जगत और विज्ञान जगत के विभाग को पारमार्थिक द्वैत माना। पृष्ठ संख्या 43। एरिस्टोटल ने अपने खंडन में इस शिव तत्व विज्ञान का नाम भी नहीं लिया है। वस्तुतः एरिस्टोटल के सब आक्षेप एकांगी और भ्रामक हैं। एरिस्टोटल के अनुसार भी सामान्य या फॉर्म्स या यूनिवर्सल बुद्ध की कोरी कल्पना नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य है, सामान्य वस्तुगत है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं में अनुगत या अनुसित या इमानेंट है। सामान्य की सत्ता वास्तविक होते हुए भी व्यक्तियों से या वस्तुओं से पृथक नहीं है। यह उनके पार या ऊपर या ट्रांसेंडेंट नहीं है। यही वास्तविक सामान्य या कॉन्स्ट्रेट यूनिवर्सल है। यह अनित्य वस्तुओं का नित्य स्वरूप है। यह भेद में अनुचित अभेद है। सांसारिक पदार्थ वस्तुतः सत्य है, वे द्रव्य हैं, वे तत्व या सब्सटेंस हैं। उन तत्वों का स्वरूप होने के कारण सामान्य भी तत्व है। वस्तुतः सामान्य ही हमारे ज्ञान के विषय हैं और विविध विज्ञानों या साइंसेज का कार्य विभिन्न पदार्थों में अनुचित सामान्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। सामान्य विज्ञान रूप है, अतः चेतन है, जड़ नहीं। संसार के विविध पदार्थ अपनी जड़ता या मैटर के कारण अनित्य, परिणामी और विनाशशील हैं। इनका सामान्य जो इनका स्वरूप है नित्य, अपरिणामी और अविनाशी है, किंतु इनमें अव्यक्त होने के कारण वह भी इनकी जड़ता से परिच्छिन्न हो जाता है। तत्व शब्द का प्रयोग वस्तुतः सामान्य या स्वरूप के लिए ही होना चाहिए, किंतु शुद्ध स्वरूप या प्योर फॉर्म जो जड़ता से नितांत रहित हो, केवल ईश्वर और आत्मा ही है। अतः ये ही वस्तुतः तत्व है। यहाँ एरिस्टोटल पर प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट झलकता है, किंतु एरिस्टोटल कभी कभी इसके विपरीत भी कहते हैं कि वस्तुतः तत्व विशेष व्यक्ति या पार्टिकुलर इंडिविजुअल ही है। यह सदा एक और वही रहता है। सामान्य को व्यक्ति रूपी तत्वों में अनुगत रहने के कारण गौण रूप से तत्व कहा जाता है। इन दो विरोधी धाराओं का समन्वय एरिस्टोटल नहीं कर सके। एक ओर तो प्लेटो के सामान्य का खंडन करने के लिए उन्होंने व्यक्ति को ही वास्तविक तत्व माना, और दूसरी ओर प्लेटो से ही प्रभावित होकर उन्होंने सामान्य को ही एकमात्र शुद्ध तत्व कहे जाने का अधिकार दे दिया। शायद उनका तात्पर्य यही था कि व्यक्तियों से भिन्न और परे सामान्य की सत्ता नहीं मानी जा सकती। कुछ भी हो, एरिस्टोटल इसका समुचित समाधान नहीं कर सके। वस्तु जगत के प्रत्येक तत्व में दो बातें पाई जाती हैं। पृष्ठ संख्या 44। एक तो उसका द्रव्य या मैटर और दूसरी उसका स्वरूप या फॉर्म। स्वरूप तो सामान्य है, जो एक जात के सभी तत्वों में सामान्य है। द्रव्य विशेषता इंडिविजुअलिटी का जनक है। यही एक तत्व को जो वह है वही बनाता है। द्रव्य परिणाम और गति का आधार है। इसके कारण प्रत्येक तत्व परिवर्तित और गतिशील होते हुए भी वही बना रहता है। द्रव्य जड़ता का प्रतीक है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण है। इसी जगत में द्रव्य और स्वरूप को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अतः इस संसार में कोई वस्तु विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप की सत्ता ही नहीं। विशुद्ध द्रव्य है मूल प्रकृति मटेरिया प्राइम, और विशुद्ध स्वरूप है ईश्वर प्योर फॉर्म। यह एक पूर्ण जड़ता है और दूसरा पूर्ण चैतन्य, एक शुद्ध कर्म है और दूसरा शुद्ध ज्ञान, एक गति और परिणाम रूप है, दूसरा निश्चल और कुटस्थ। ये दोनों इस संसार के माता पिता हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु इन माता पिता के गुणों का सम्मिश्रण है। अतः संसार के प्रत्येक तत्व में द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण होना अनिवार्य है। द्रव्य को एरिस्टोटल साध्य या पोटेंशियलिटी और स्वरूप को सिद्ध या एक्चुअलिटी कहते हैं। साध्य में सुप्त शक्ति होती है जिसको जगाने पर वह कुछ बन सकता है किंतु अभी बना नहीं है। उसमें विकास की क्षमता है किंतु अभी विकसित नहीं हुआ है। जब वह इस शक्ति को जागृत करके कुछ बन जाता है, अर्थात किसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वह सिद्ध कहलाता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया है। मूल प्रकृति शुद्ध साध्य है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह पूर्ण जड़ता है, अतः हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ईश्वर शुद्ध सिद्ध है, उनमें पूर्ण चैतन्य है, अतः उनका भी हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारे संसार की प्रत्येक वस्तु साध्य और सिद्ध का मिश्रण है, द्रव्य और स्वरूप का मिश्रण है, जड़ता और चैतन्य का मिश्रण है। हमारा संसार परिणामी और गतिशील है। यह परिणाम और गति एक निश्चित लक्ष्य के कारण होती है। विश्व में विशिष्टाद्वैत या आइडेंटिटी इन डिफरेंस है। यहाँ भेद में अभेद अनुसित है। संसार के विविध पदार्थ इस अभेद को पाने के लिए गतिशील हैं। गति या मोशन या परिणाम या चेंज वस्तुतः विकास डेवलपमेंट है। द्रव्य का स्वरूप की ओर विकास, साध्य का सिद्ध की ओर विकास। प्रत्येक गति या परिणाम के चार कारण होते हैं। पृष्ठ संख्या 45। पहला है उपादान कारण मैटेरियल कॉज, दूसरा निमित्त कारण अर्थात इफिशियंट कॉज, तीसरा स्वरूप कारण फॉर्मल कॉज, और चौथा है लक्ष्य कारण फाइनल कॉज। उदाहरणार्थ संगमरमर की प्रतिमा को लीजिए। इसके लिए आवश्यकता क्या है? पहला संगमरमर की, दूसरा निर्माता की, तीसरा निर्माता के मस्तिष्क में प्रतिमा के स्वरूप की, और चौथा प्रतिमा बनाने के लक्ष्य की। यह तो जड़ पदार्थ का उदाहरण हुआ। अब प्राणी जगत के उदाहरण लीजिए। किसी प्राणी की उत्पत्ति के लिए आवश्यकता है, पहला माता के रज की, दूसरा पिता के वीर्य की, तीसरा प्राणी के स्वरूप की और चौथा उत्पत्ति के लक्ष्य या उद्देश्य की। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एरिस्टोटल ने द्रव्य और स्वरूप के अतिरिक्त निमित्त और लक्ष्य को भी स्वीकार किया है। साध्य या द्रव्य को सिद्ध या स्वरूप बनाने के लिए निमित्त कारण की जो गति या परिणाम उत्पन्न कर सके और उस लक्ष्य की जिसकी ओर वह प्रगत कर रहा है आवश्यकता है। सृष्टि का आदि निमित्त कारण ईश्वर है जो स्वयं अगतिशील है और अपरिणामी होते हुए भी सारी गति और परिणाम का जनक है और वही सृष्टि का चरम लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए सृष्टि गतिशील है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में द्रव्य और स्वरूप दोनों है। प्रत्येक वस्तु साध्य से सिद्ध की ओर अग्रसर हो रही है क्योंकि उसमें एक कमी या अभाव या प्राइवेशन है जो उसमें नहीं होना चाहिए था और जिसको दूर करने की शक्ति उसमें अंतर्निहित है। संसार की वस्तुओं में एक अखंड तारतम्य है। प्रत्येक वस्तु अपने से ऊपर की वस्तु के लिए द्रव्य है और नीचे की वस्तु के लिए स्वरूप है। बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष की लकड़ी से पलंग। बीज में वृक्ष छिपा है और वृक्ष में पलंग। बीज में वृक्ष बनने की ओर वृक्ष में पलंग बनने की ओर सुप्त शक्ति है। यह साध्य है किंतु अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यह कमी है, अभाव है जिसे दूर किया जा सकता है। बीज में वृक्ष का स्वरूप छिपा है, सुप्त है। जब बीज वृक्ष बन जाता है तो यह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। बीज की दृष्टि से वृक्ष स्वरूप है किंतु पलंग की दृष्टि से वृक्ष द्रव्य है। दूसरा उदाहरण लीजिए, मिट्टी से घास उगती है और गाय द्वारा खाई जाकर उसके रक्त में परिणत होती है। मिट्टी के लिए घास स्वरूप है किंतु रक्त के लिए घास द्रव्य है। साधारण पत्थर कालांतर में संगमरमर बनता है और संगमरमर से प्रतिमा बनाई जाती है। साधारण पत्थर के लिए संगमरमर स्वरूप है किंतु प्रतिमा के लिए द्रव्य है। पृष्ठ संख्या 46। एरिस्टोटल ने सुप्त शक्ति या पोटेंसी और जागृत शक्ति या एक्ट में भेद किया जो महत्वपूर्ण है। साध्य सिद्ध का अभाव नहीं, साध्य में सुप्त शक्ति है जो जागृत अवस्था में सिद्ध बना देती है। जिसमें सुप्त शक्ति न हो उसे साध्य नहीं कह सकते। सुसुप्त में मनुष्य में चिंतन की सुप्त शक्ति है जो साध्य है और जागृत अवस्था में सिद्ध बन सकती है किंतु पत्थर में यह शक्ति नहीं है। एरिस्टोटल के अनुसार गति और परिणाम सत्य विकास है। इस विकास का विभिन्न श्रेणियों में तारतम्य है। साध्य में अंतर्निहित होने के कारण सिद्ध की सत्ता साध्य से पहले है। यों व्यवहार में भले ही साध्य सिद्ध के पहले आए, बालक युवक बनता है, बालक साध्य है, युवक सिद्ध है। व्यवहार में पहले बालक होता है और बाद में युवक, किंतु वस्तुतः युवक बालक में पहले ही छिपा हुआ है, अन्यथा बालक युवक नहीं बन सकता। विकास की श्रेणियों में ऊपर की श्रेणी सुप्त या गुप्त रूप से नीचे की श्रेणी में विद्यमान है और नीचे की श्रेणी विकसित होकर प्रकट रूप से ऊपर की श्रेणी बन जाती है। वस्तु जगत में और विज्ञान जगत में वास्तविक भेद नहीं है। सामान्य या विज्ञान सिद्ध है और वस्तुएं साध्य हैं। परमार्थ व्यवहार में ही अंतर्निहित है और व्यवहार परमार्थ की ओर विकसित हो रहा है। साध्य जब सिद्ध बन जाता है, द्रव्य जब स्वरूप लाभ कर लेता है, तब एरिस्टोटल ने उसे सिद्ध सत्ता अर्थात इंटेलेची का नाम दिया है। असली सिद्ध सत्ता तो ईश्वर की ही है, जो इस जगत को आकर्षित कर रहे हैं और यह जगत उनकी ओर विकसित हो रहा है। जैसे सिद्ध साध्य में अंतर्निहित होता है और उसका लक्ष्य है, वैसे ही ईश्वर इस संपूर्ण जगत में अंतर्निहित है और इसके लक्ष्य हैं। वे सिद्ध है, जगत साध्य है, वे ही एकमात्र परम सिद्ध या प्योर एक्चुअलिटी है। उनकी शक्ति पूर्ण जागृत है, वे नित्य हैं, वे विशुद्ध ज्ञान रूप हैं। उनमें जड़ता का सर्वथा अभाव है, स्वयं अगतिशील और अपरिणामी हैं, किंतु समस्त गति और परिणाम के कारण हैं अर्थात अनमूव्ड मूवर, वे ही सबके लक्ष्य हैं। सृष्टि में अंतर्यामी हैं, सृष्टि उनके बाहर नहीं है, वे इस सृष्टि से अलग रहने वाले सृष्टिकर्ता नहीं हैं, वे पूर्ण अद्वैत रूप हैं, वे प्रपंचातीत हैं। सृष्टि उनके स्वरूप की प्राप्ति के लिए विकासशील है। पृष्ठ संख्या 47। यह एरिस्टोटल के दार्शनिक विचारों का, उनके तत्व विज्ञान का सार है। इसके अतिरिक्त वे निगमन तर्क या डिडक्टिव लॉजिक के जनक हैं और यह तर्कशास्त्र आज भी लगभग उसी रूप में पढ़ाया जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति, आचार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र पर भी काफी लिखा है। उनकी प्रतिभा असाधारण है और उनका कार्य अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण। ये सब विषय हमारे इस ग्रंथ के क्षेत्र के बाहर हैं, अतः इनका संक्षिप्त परिचय भी नहीं दिया जा सकता। तृतीय अध्याय समाप्त।